बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव महाराज की जय, सब संतो की जय। परमात्मा और गुरुजनों की असीम कृपा से विचार हम लोग कर रहे हैं कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद में। तो द्वितीय अध्याय के प्रथम मल्ली का विचार चल रहा था। नचिकेता को आत्मा का उपदेश करते हैं जमराज जी, उसके ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कुछ दान पुण्य कर लिए तो कुछ सुख की प्रतीति होती है, परंतु उतने से आत्यंतिक दुख की निवृत्ति नहीं होती है। ज्ञानात एव तु कैवल्यम, आत्मा के यथार्थ स्वरूप ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो चीज को न जानने पर दुख होता है तो उस दुख की निवृत्ति उस चीज को जानने पर ही होती है। इसलिए स्वरूप को न जानने पर आध्यात्मिक आदिदेविक आदिभौतिक दुख की प्राप्ति हो रही है। इसलिए स्वरूप के जानने से ही समस्त दुख की निवृत्ति होती है। ये बताया आप लोगों को, एक निवृत्ति मात्र है, ये आत्यंतिक निवृत्ति है। जिसमें दुख की निवृत्ति हो और उसमें दुख का प्रागभाव न हो, उसके बाद आगे दुख न हो, उसको कहा जाएगा आत्यंतिक दुख निवृत्ति। सुषुप्ति में गया अथवा उपासना करके ब्रह्मलोक में गया अथवा प्रकृति की उपासना करके प्रकृति लय हो गया, जिसे चित्त का लय हो जाता है सुषुप्ति में, ऐसा प्रकृति की उपासना करने पर बहुत दिन तक बहुत युग पर्यंत अपना चित्त प्रकृति में लय होकर के रहता है। लेकिन उसका जो पुण्य है उपासना से होने वाला, वो पुण्य समाप्त हो जाने पर फिर शरीर को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आत्यंतिक दुख की निवृत्ति स्वरूप की अनुभूति तो आत्मज्ञान से ही होती है। तो ये नचिकेता को बता रहे हैं चतुर्थ मंत्र में, जिस चैतन्य से स्वप्न का पदार्थ जाना जाता है, जागृत काल में जाना जाता है पदार्थ, वही ही ब्रह्म है, वही तुम्हारा जिज्ञास है और वही संसार में वास्तविक जिज्ञास है, और कोई जिज्ञास नहीं है। अथवा ये समझ लो, जितने भी हम कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, जो भी करते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं, सबका प्रयोजन अपना मिलन हो जावे परमात्मा से, परमात्मा का साक्षात्कार हो जावे। समझ लो कि जैसे बाराती जाती है तो दुल्हन के पास जाती है, और दूल्हा जो है बाराती में जाता है, तो महत्व बाराती का नहीं होता है, महत्व दूल्हे का होता है ना। यद्यपि बाराती के साथ दूल्हा है, लेकिन महत्व दूल्हे का होता है, बाराती का नहीं होता है। मान लो कि बहुत आपने प्रयत्न किया, बहुत बढ़िया डेकोरेशन वगैरह किया है, बाजा गाजा बज रहा है, और भाग गया मान लो दूल्हा, तो सब काम खत्म हो गया कि नहीं? इसलिए कीमत जो है बाराती की दूल्हे के वजह से है है कि नहीं। तो इसी प्रकार यहाँ पर दूल्हा कौन है भाई, यहाँ पर दूल्हा जीवात्मा, यहाँ पर दूल्हा कौन है जीवात्मा है, और दुल्हन कौन है दुल्हन कौन है, परमात्मा दुल्हन है भाई, जिसके साथ मिलोगे वो इतना होगा, दूल्हा का मिलन होता है दुल्हन के साथ, इसी बार जीवात्मा का मिलन हो परमात्मा मतलब अपने स्वरूप के साथ, और सारा प्रयत्न किया और दूल्हा का मिलन नहीं हुआ तो बाराती का क्या महत्व रहा, इसलिए जो भी हम करते हैं सब बाराती है और क्या है और मान लो जीते जी परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, जीवात्मा का मिलन नहीं हुआ, सब बेकार हो गया ना। इसलिए परमात्मा का ज्ञान हो इसलिए सारा प्रयत्न है, ऐसा है। वो परमात्मा कैसा है तो बता दिया, वो व्यापक है। उस परमात्मा को जिसने जाना तो किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है, ये बात बता दिया कि आत्मानं मत्वा धीरः न शोचति, धीर पुरुष जो है ज्ञानी दुख को प्राप्त नहीं करता। अरे भाई दुख का हेतु हो तब तो दुख होगा, दुख का हेतु ही नहीं रहा अच्छा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। वो परमात्मा को जानना है, परमात्मा का साक्षात्कार करना है, जैसे आप लोग गीता पढ़ते हो पहले तुम पदार्थों को बता दिया जीवात्मा को, फिर उसके बाद तत्पदार्थों को बता दिया परमात्मा को, तो दोनों का निर्धारण होने के बाद फिर दोनों का एकत्व हो जाता है। श्रीमद् गीता में प्रथम अध्याय से लेकर के षष्ठ अध्याय पर्यंत तम पदार्थ का निरूपण हुआ, सप्तम अध्याय से लेकर के बारहवां अध्याय पर्यंत तत्पदार्थ का निरूपण हुआ, फिर दोनों का एकत्व का निरूपण किया गया आगे तेरहवां अध्याय में क्षेत्रज्ञम चाभिमामिद्धि सर्व क्षेत्र से भारत। ठीक इसी प्रकार यहां पर बता रहे हैं, देखो तो वो परमात्मा अपना स्वरूप है, पंचम मंत्र में इसको कहते हैं महावाक्य, जीवात्मा परमात्मा के एकत्व का निरूपण करने वाला वाक्य होता है महावाक्य, तत्तमसि है अहम् ब्रह्मास्मि है। ठीक इस प्रकार यहां पर कह रहे हैं, य इमं मद्ददं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो बीजगुप्सते एतद्वैतत्। ये नचिकेता यही आत्मा है, यही तुम्हारा स्वरूप है। तो कहते हैं यह जो कोई भी हो, देखो यहां पर श्रुति नाम नहीं लिया, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि कौन है, पुरुष है कि स्त्री है कौन है, ऐसा कुछ नहीं मतलब, जो कोई भी हो। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं कश्चित, जैसे पीछे भी कहा ना कश्चित धीरह प्रत्येक आत्मानम एक चत। ठीक इसी प्रकार भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कश्चित कोई भी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है यदि अधिकारी हो तो, अधिकारी की बात होती है। इसलिए बोलते हैं यह जो कोई भी हो, जो कोई भी हो, न वर्ण का भेद, न आश्रम का भेद, न जाति का भेद, तो इस जीवात्मा को जानता है पहले कि मेरा स्वरूप क्या है। सबसे पहला काम यह करना चाहिए कि अपना स्वरूप क्या है, इसका पता लगाना चाहिए। तो ये बोलते हैं कि मद्धदम जीवम आत्मानम वेद इमम, तो मीठे मीठे फल को जो खाता है, मधु मतलब सहज जानते हो मतलब मीठा लगता है, इसी प्रकार पुण्य का फल जो सूखे वो भी मीठा लगता है, इसलिए पुण्य का फल को जो भोग रहा है, कौन भोग रहा है भाई? जीवात्मा भोग रहा है। तो भोक्ता तब बन जाता है कि आत्मा का संबंध बना लेता है मन के साथ, मन के साथ शरीर के साथ संबंध बना लिया तो आप हो गए भोक्ता। और संबंध बनाए बिना भोक्ता कैसे बने? तो इसका तात्पर्य एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है, एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। जहां पर वाच्यार्थ होता है वहां पर विशिष्ट चेतन को लेते हैं। इसलिए आत्मा कहो, ब्रह्म कहो, ईश्वर कहो, है ना, ये सब के सब जो है शब्द का वाच्यार्थ विशिष्ट चेतन होता है। लेकिन जहां पर सच्चित आनंद बोलेंगे तो वहां पर जो है वाच्यार्थ नहीं लिया जाएगा, वहां पर लक्ष्यार्थ लिया जाएगा। इसलिए तत्त्वमसी आदि में एकत्व वाच्यार्थ को लेकर नहीं हो सकता, लक्ष्यार्थ को लेकर के होता है। इसलिए जहां पर सत कहेंगे, चित कहेंगे, अनंत कहेंगे, वहां पर सत्यम ज्ञानम अनंतम कहेंगे, वहां पर वाच्यार्थ को नहीं लिया जाता है, लक्ष्यार्थ को लिया जाएगा। इसलिए यहां पर आत्मा शब्द से लक्ष्यार्थ लेना है। विशिष्ट चेतन नहीं, सामान्य साक्षी, साक्षी साक्षी को लिया जाएगा, कुटस्थ को लिया जाएगा। इसलिए बोलते हैं, इसलिए शरीर आदि से भी अपने को अलग करके समझो तो तुम सामान्य हो जाओगे, हो गया ना। ये सामान्य रूप से समझना ये बड़ा कठिन हो जाता है। ये जो गांड लग जाएगी ना, आत्मा के जो गांड लग गई है अनात्मा शरीर मन बुद्धि के साथ, ये जो गांठ है ना, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है, हो गया ना। इसलिए गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, यद्यपि मिसा छुटता कठिन है, जड़ चेतन ही ग्रंथि प्रेग है, और यद्यपि मिसा छुटता कठिन है तो मिथ्या। गांठ जो है संबंध, आत्मा अनात्मा का जो संबंध हो गया है अध्यास, इसका नाम है गांठ, हो गया ना भाई। गांठ लगाते ना आप लोग, पति का गांठ पत्नी के साथ होता है कि नहीं, वेदी में गांठ लगाकर भाई परिक्रमा करते हो, तो गांठ क्यों लगाते हैं? कि सुख के लिए दोनों का दाम्पत्य जीवन में सुख हो, इसलिए तो गांठ लगाते हो। लेकिन कोई सुखी हुआ है? मैं सुखी कोई नहीं होता, गांठ क्यों लगाते हो फिर? यद्यपि वो शास्त्रीय है, ऐसा नहीं, यदि दोनों के जीवन का उद्देश्य को समझे तो सुख होगा, दुख नहीं होगा। इसलिए विवाह भी एक संस्कार होता है, नहीं छोड़ा संस्कार, विवाह भी एक संस्कार होता है। वह संस्कार किस लिए होता है? चित्त शुद्ध हो तो परमात्मा का भजन करेंगे, इसलिए विवाह होता है। इसलिए भी आप लोगों को बताए, पत्नी पत्नी बोलते हैं ना, तो विवाह कल्याण मात्र से पत्नी नहीं हो जाती। तो पत्नी शब्द का अर्थ पत्युर्नो यज्ञ संयोगे स्त्री, पत्युर्नो यज्ञ संबंधी स्त्री, मतलब जिसके साथ संबंध होकर के आप वेदी में बढ़ते हो, यज्ञ करते हो ना, और दोनों का फल बराबर मिलेगा, वो होता है पत्नी, धन में ना। इसलिए यदि अपने दोनों के उद्देश्य को समझे तो बंधन नहीं है। ये देखो, आत्मा अनात्मा का जो अध्यास है इसका नाम क्या है? गांठ, इसको कहते हैं गांठ। तो विचार के बिना ये अध्यास जाता नहीं, विचार के बिना। इसलिए घटपट आदि से मैं जैसे भिन्न हूं, ठीक इसी प्रकार शरीर मन बुद्धि से मैं भिन्न हूं, ये हो गया कुटस्थ। तो कुटस्थ की बात यहां पर कहते हैं, तो अपना कुटस्थ स्वरूप जो परमात्मा का स्वरूप ही होगा, कोई भिन्न नहीं होगा, ये बात बोलते हैं। देखो, इसलिए अभी जो अविद्या अवस्था में है, हम जिसको मैं समझ रहे हैं, ये परमात्मा को वास्तविक नहीं समझ रहे हैं। परमात्मा को जानते तो है लेकिन दूर से जानते हैं, हम अपने को विशिष्ट समझ रहे हैं और अपने से भिन्न है परमात्मा, परमात्मा से मैं भिन्न हूं। इसलिए परमात्मा को जानते तो है परोक्ष ज्ञान से, लेकिन नजदीक से नहीं जाना, दूर से जाना। इसलिए अपना सबसे नजदीक है ना, सबसे नजदीक संबंध किसके साथ होगा? विचार करने पर सबसे नजदीक संबंध परमात्मा के साथ होगा, स्वरूप के साथ होगा। इसलिए सबसे नजदीक होता है परमात्मा अपना स्वरूप। इसलिए सबसे नजदीक जो है वस्तु, उसका ज्ञान कराता है शास्त्र, उपनिषद। इसलिए इसको कहते उपनिषद, उपनिषद कहा गया। ये लोग अभी आप श्रवण कर रहे हो ना, ये उपनिषद कर रहे हो, तो इसको उपनिषद इसलिए बोल दिया। उपमल समीप, उपकार था समीप। और समीप भी दो प्रकार के होते हैं, एक सातिशय समीप और एक होता है निरतिशय समीप, है ना। दूसरे की अपेक्षा ये शरीर हो गया नजदीक, हो गया ना। भाई के लड़के, भाई के पुत्र की अपेक्षा अपना पुत्र हो गया नजदीक, हुआ कि नहीं हुआ? इसको कहते सातिशय सामीप्य हो गया। इसी प्रकार स्थूल शरीर यह होगा समीप दूसरे शरीर से, फिर सूक्ष्म शरीर ये और नजदीक हो गया, हो गए ना भैया। तो बुद्धि तक ले लो भाई, बुद्धि तक ले लो, ये अत्यंत नजदीक हुआ। लेकिन उससे भी और नजदीक कौन है? अपना स्वरूप है। इसको कह रहे निरतिशय समीप, इससे बड़ा कोई और सामीप्य नहीं है। इसलिए अत्यंत निरतिशय समीप जो अपना स्वरूप है, इसका ज्ञान कराता है उपनिषद। इसलिए इसको बोलते हैं उपनिषद, ध्यान में रखो। यही बात बोलते हैं यहां पर, सबसे अपना जो नजदीक है वो है परमात्मा। इसलिए मंत्र में देखो, ईशानम भूत भव्यस्य अंतिकात, अंतिकार्थ समीप। और कैसा समय? निरतिशय समय, मतलब अभेद। उस परमात्मा का रूप से अभिन्न रूप से जानता है, मेरा स्वरूप तो परमात्मा है। और परमात्मा जो ईश्वर है, सबका शासक है जी, ये बोल दे भूत भव्य से ईशानम, काल उसको नहीं बांध सकता है। तो त्रिविध काल से वो अपरिछिन्न है, अपरिछिन्न, जो पहले ना हो और बाद में हो, उसको कहा जाता है काल परिचिन्न। तुम्हारी उम्र क्या है बोलते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है तो कोई 60 बोलेगा, 70 बोलेगा। तो कौन परिचिन्न हो गया भाई? यहाँ पर शरीर हो गया परिचिन्न। ये शरीर में आत्मबुद्धि करके बोलते हैं कि मेरी उम्र इतनी है, आत्मा की कोई उम्र नहीं है, आत्मा तो पहले से ही विद्यमान है। इसलिए शरीर पहले नहीं था भाई, मतलब शरीर का प्रागभाव बोलते हैं ये नैयायिक लोग। जो प्रागभाव का प्रतियोगी होता है उसको बोलते हैं काल परिच्छिन्न, है ना। ऐसा प्रागभाव प्रतियोगितम काल परिच्छिन्न। लेकिन ये तो शरीर का, वो आत्मा का नहीं होता है, न जायते मरियते वा कदाचित। तो इसलिए बोलते हैं परमात्मा काल से परिच्छिन्न नहीं है। अच्छा, तो हम पहले सिद्ध है इसलिए काल सिद्ध होता है। आत्मा का ज्ञान पहले हो रहा है, उसके बाद काल का ज्ञान होगा, है ना। इदानीम पुस्तकम अहम जानामि, अभी मैं पुस्तक को जान रहा हूं। आत्मा पहले सिद्ध है इसलिए इदानीम जो काल बोलते हैं ना वर्तमान, तब सिद्ध होगा, है ना। काल का ज्ञान पहले हो उसके बाद आत्मा का ज्ञान यदि हो तब तो काल परिच्छिन्न हो जाएगा। आत्मा काल से परिच्छिन्न नहीं होता है। इसलिए महाकालेश्वर है कि नहीं उज्जैन में, वो महाकालेश्वर हो गए, काल का भी महाकाल हो। तो भूत भव्य से ईशानम, सभी काल का ही शासक है, शासक है। इसलिए आप लोग जानते हैं जो महामृत्युंजय की उपासना किया ना, कौन से तो 12 साल के थे उसके जो है मार्कंडेय ऋषि। जब मार्कंडेय ऋषि की आयु थी भी 12 साल तक, बराबर ना, और जमराज जी आ गए उसको लेने के लिए। ये तो भगवान के, भगवान शंकर के उपासक थे, जब आए तो घबरा गए ये, भगवान को ऐसे पकड़ लिया हो, भगवान शंकर की मूर्ति को, उनके लिए तो मूर्ति नहीं हो, भगवान ही हो। और जमराज जब खींच करके लेने लगे तो भगवान शंकर प्रकट हो गए, तुम नहीं ले सकते इसको। तो क्यों नहीं ले सकते? जमराज ने कहा कि प्रभु आप ही ने मुझे नियुक्त किया है इस काम के लिए, हाँ, और आपके आदेश का मैं पालन ही कर रहा हूं। आपके आदेश का पालन यदि न करो तो मुझे ही दंड मिलेगा। तो भगवान ने कहा, देखो तुमको बनाया किसने? मैंने बनाया, और नियम भी मैंने ही बनाया, इसलिए जो बनाया वो तोड़ भी सकता है। ऐसा है, इसलिए परमात्मा स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र नहीं होता है, इसलिए काल के महाकाल हो गए। तो ऐसे परमात्मा का साक्षात्कार यदि हो जावे तो किसी प्रकार का भय नहीं होगा, और भय यदि हो तो कोई रक्षा करने के लिए इच्छा करता है भैया? किसी प्रकार का भय ही नहीं है तो रक्षा क्यों करेगा, किससे रक्षा करेगा? इसलिए जब अद्वैत परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो कोई रहा नहीं, अद्वैत से भिन्न कोई दूसरा हो तो भय होता है। इसलिए बोलते हैं, देख तत्व न विजुग सते, उस परमात्मा का ज्ञान यदि हो जावे तो न भी जुगुब सते, रक्षा करने की इच्छा नहीं करता, स्वयं की रक्षा हो जाए। जैसे पर्दा में जो अग्नि जल रहा है, हाँ, तो पर्दे का कुछ बिगड़ेगा भाई? कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, तो पर्दा क्यों रक्षा करेगा? तो पर्दा को मालूम है कि ये अग्नि तो मिथ्या है, हो गया ना? ठीक, इसमें परमात्मा का साक्षात्कार जिसको हो गया तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्मा, ब्रह्म से मतलब मेरे से कोई भिन्न नहीं है, यही ब्रह्म ज्ञान का फल है। देखो, ब्रह्म ज्ञान का फल दूसरा कुछ नहीं है, एक परमात्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, आत्मेव इदम सर्वम। तो अपने से भिन्न कोई हो तो भय होता है भी, द्वितीया द्वै भय भवती, हो गया ना? आप अंधेरे में कहीं जा रहे हो और अपनी छाया देख लिया, बच्चा देख लेता है तो अपनी छाया देख करके डर जाता है, देखो क्यों, मेरे से भिन्न है, देखो है ना? इस प्रकार माँ जो दर्पण प्रतिबिंब दिखा करके डरा देती है बच्चे को, तुम नहीं खाओगे तो इसको दे देंगे, दर्पण में जो दिख रहा है उस बालक को दे देंगे, तो ये डर हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार अपने से कोई भिन्न यदि हो तब तो भय होता है, और भिन्न यदि न हो तो भय नहीं, और भय यदि न हो तो रक्षा करने की इच्छा नहीं होती है। तो ऐसा जो है स्वरूप वो तुम्हारा है, तद्वैत, यही आत्म तत्व है। अच्छा, तो प्रत्येक आत्मा अपना स्वरूप है और वही सर्वात्मा है, जितने भी घटपड़ा दिख रहे हैं सबकी आत्मा, सबका स्वरूप तो परमात्मा ही है। इसलिए परमात्मा का साक्षात्कार साधक सर्वत्र करता है, यदि नहीं कर सके भाई, सर्वत्र जो तुमको परमात्मा का दर्शन नहीं हो पा रहा है तो कम से कम माता में करो, धर्म है ना, हितोपदेश में मातृदेव भव ये कह दिया है, सर्वत्र तुमको परमात्मा की उपासना नहीं हो पा रही है तो कम से कम माता में करो भाई, जहां पर श्रद्धा हो जाती है। सर्वत्र दर्शन नहीं हो रहा है तो है पिता में करो, गुरु में करो, नहीं तो मूर्ति में करो, ये कहा जाता है। इसलिए जो वास्तविक साधक होते हैं उनके लिए तो परमात्मा सर्वत्र है,
इसलिए परमात्मा सर्वात्मा है। इसी बात को आगे बता रहे हैं, देखो षष्ठ मंत्र में, जिसके बाद पुस्तक है, देखो
यपूर्वं तपसो जातं अद्य पूर्वं अजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैत। यही परमात्मा है, जमराज जी बोल रहे हैं। यहाँ पर भी नाम ले लिया, भाई पुरुष है कि स्त्री है, कौन है, यह जो कोई भी हो मुमुक्षु साधक, वो ऐसा यदि समझता हो, साक्षात्कार करता हो तो कहते हैं, देखो विलक्षण बोलता रहा यहां पर, वही परमात्मा ही समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिव्यक्त होकर के हिरण्यगर्भ हो गया। वही परमात्मा ही हिरण्यगर्भ है, देखो इसलिए हिरण्यगर्भ में परमात्मा की बुद्धि करते हैं, ये सूर्य में परमात्मा की बुद्धि करते हैं, ये कह रहे हैं। और वो जो हिरण्यगर्भ है वो सबसे पहले उत्पन्न हुआ, ये पंचम महाभूत उत्पन्न होने से पहले ही हिरण्यगर्भ है, ये कहते हैं। अद्भ्यः पूर्वं अजायत, अद का तो जल, जल जल से सभी पंचम महाभूत ले लो उपलक्षण, तो पंचम महाभूत की उत्पत्ति से पहले ही हिरण्यगर्भ प्रकट हो गया। और हिरण्यगर्भ का मूल कौन है, बोलते हैं परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। ये बोलते यह पूर्वम तपसो जातम, तप का अर्थ ज्ञान रूप ब्रह्म, यह सर्वज्ञान सर्ववेद यस्य ज्ञानम अयम तप, इसलिए तप शब्द से परमात्मा लेना है, परमात्मा ही हिरण्यगर्भ रूप से प्रकट हो जाते हैं और वही अपने अपनी बुद्धि में प्रतिष्ठित है। ये बोलते हैं देखो कि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं, गुहा ये हितुद्धि, ये बुद्धि रूपी जो गुहा है ना, इसमें जो है परमात्मा प्रतिष्ठित है और इसी से सारा का सारा ढांचा चल रहा है। ये बोलते यो भूते भीर व्यपश्यत, भूत का अर्थ पंचम महाभूत, ये शरीर कैसा है, भी पांचम महाभूत है, पांच भौतिक शरीर है ये, धन में ना, ये शरीर पांच भौतिक है तो पांच भौतिक है ना, लेकिन विचार ना करने पर ये दिव्य रूप से चमकता है कि नहीं, विचार ना करने पर शरीर कैसा चमकता जो अवस्था, बिल्कुल ये तो दिव्य है, ये तो देवता है, लेकिन विचार करेगा तो हाड़ मांस के पुंज से कोई अतिरिक्त होता नहीं, इसलिए जो है आसक्ति हो जाती है ना। कभी कभी हम जो है मणिकर्णी के घाट में देखते थे, हम ये देखते थे काशी में कि जो लोग रोजी हजार हजार दाह संस्कार कर रहे हैं, वहां के कर्मचारी लोग, इतना करने पर वैराग्य नहीं होता है, बड़ा विलक्षण भी है, सौ सौ हजार हजार दाह संस्कार करते हैं, दाह संस्कार करने वालों को वैराग्य नहीं होता है, इससे बड़ी क्या विलक्षणता है माया की, हो गया ना। लेकिन हमने देखा कोई कोई विदेशी लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं एक बार देखने से वैराग्य हो जाता है, हमने देखा, कुछ रास्ते से जाते थे तो कोई कोई एक बार देख लिया विदेशी और बैठ करके रोता था, वो रोते थे, इसका मतलब क्या है, वैराग्य हुआ कि नहीं। हाँ, लोग रोज ही करते हैं दाह संस्कार, वैराग्य नहीं होता है ना, इसलिए विचार करने पर वैराग्य होता है। इसलिए दोष दृष्टि जिहासाच, दोष दर्शन करने पर वैराग्य होता है, पुनर्भोगेश्व दीनता, पंचदशी कार ने कहा ना, दोष दर्शन हो रहा है तब जाकर वैराग्य होगा, और वैराग्य होने पर क्या होगा, कोई दीनता नहीं होगी ना, दरिद्र परा नहीं रहेगी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, यदि ऐसा होता हो समझ लो कि वैराग्य नहीं है। तो कहते हैं ये सारा का सारा जो ढांचा है, कार्यकारण संघा शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब जो किससे चल रहा है, देखो जैसे कोई ड्राइवर चलाता है गाड़ी को, बराबर चलाता है, इसी प्रकार जो इंजन है शरीर, ये किससे चल रहा है, ये विचार करना चाहिए। तो कहते हैं परमात्मा ही चलाता है ये शरीर को, और चलाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए आगे बताएंगे जमराज जी कि न प्राणे न अपाने न मर्त्यो जीवति कश्चन, ये शरीर को चलाने वाला है ना कोई प्राण है ना अपान है, ये प्राण अपान को भी कौन चला रहा है, परमात्मा चला रहा है, हो गया कि नहीं। हाँ, इसलिए जब तक पैसा है डॉक्टर बोलेगा चिंता मत करो। हाँ, तो सभी लोग नहीं है ना, कुछ लोग ऐसा करेंगे लेकिन ये भूल जाता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, उसका कर्म यदि है तो बचेगा, वो कर्म यदि नहीं है तो नहीं बचे। ये जो है साधक विचार कर पाता है, ये तो चलाने वाला परमात्मा है ना, ये जो परमात्मा, परमात्मा का साक्षात्कार साधक कर पाता है। जैसे आप प्रकाश देखते हो, ये प्रकाश हो रहा है, देखो प्रकाश जो हो रहा है, प्रकाश कब होगा भाई, मान लिया तार लगा दिया, बल्ब लगा दिया है ना, तो लेकिन तार का ये तार के सत्य नहीं है। हाँ, बल्ब कितना भी अभिमान करे, 1000 पावर का बल्ब, देखो मैं इतना प्रकाशित करता हूं, ये मेरी महिमा है, थोड़ा जरा जो है स्विच ऑफ कर दो, उसका अभिमान खत्म हो जाएगा कि नहीं बल्ब का है ना। हाँ, ये तो कह सकते हो, तार के बिना, बल्ब के बिना प्रकाश नहीं हो सकते, ये बात तो सही है, लेकिन प्रकाशन करने की शक्ति ना तार की होती ना बल्ब की होती है, वो तो शक्ति विद्युत की होती है। इसलिए तार भी विद्युत नहीं है, बल्ब भी विद्युत नहीं है, इसलिए प्रकाश को देख करके उसको लक्षित करना है विद्युत को, हो गया कि नहीं। यहां पर ऐसा है जिससे सारा का सारा ढांचा चल रहा है। यहां पर बल्ब कौन हो गया, बल्ब समझ लो कि शरीर, बल्ब कौन हो गया, शरीर हो गया ना, स्थूल शरीर समझ लो, और तार कौन हो गया, तार है सूक्ष्म शरीर समझ लो, समझ में है ना। लेकिन इसमें जो कार्य चल रहा है, अनवरत जो चल रहा है, इस चलाने का काम ना ये शरीर करता है ना सूक्ष्म शरीर करता है, तो कौन कर रहा है, परमात्मा कर रहा है। परमात्मा जैसे तार में विद्युत रह करके प्रकाशन करता है, ठीक इसी वह सूक्ष्म शरीर में रह करके ये परमात्मा सारा का सारा कर, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति, देखो पुस्तक रख दिया तो पुस्तक है, ये ज्ञान हो रहा है, केवल बुद्धि कुछ नहीं कर सकती, बुद्धि में ये चेतन ना हो तो बुद्धि कुछ नहीं कर सकती भैया। तो ये हमको समझना है, जैसे तार और प्रकाश, तार और बल विद्युत नहीं है, लेकिन विद्युत को अभिव्यक्त करते हो, बस इतनी भूमिका है। इसलिए यहां पर जो कार्य हो रहा है शरीर में है ना, क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति हो रही है ना, ये क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति को अभिव्यक्त करने का काम शरीर करता है, सूक्ष्म शरीर करता है, बस इतना काम है, लेकिन शक्ति उनके वास्तविक नहीं है। तो जिस शक्ति से ये शरीर में क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति हो रही है, वो है परमात्मा, यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, ये कह रहे हैं यहां पर। तो एतद वैतद, यही तुम्हारा जानने योग्य है। अच्छा, तो इसी बात को आगे और बढ़ाते हैं, तो वो जो परमात्मा है, सबकी माता है, अदिति है, अदिति, देखो जितने भी देव देवता है ना, सबकी माँ है अदिति, परमात्मा है, जब पूरा देवता है उसका ही मूल परमात्मा है। ये आगे कहते हैं, या प्राणेना संभवति अदितिर देवता मयी गुहां प्रवेश तिष्ठन्तीं या भूते भीर वजायत एतद्वैत। हे नचिकेता, ये आत्मा है, जो परमात्मा है प्राण के साथ यहां पर अभिव्यक्त हो गया, ये शरीर में देखो नहीं, जैसे ये प्रकाश अभिव्यक्त हो रहा है बल में है ना, प्रकाश रूप से अभिव्यक्त हो रहा है, इसी प्रकार यहां पर परमात्मा अभिव्यक्त होता है सत्य शरीर में। और वो कैसा है, अदिति, अदिति अदिति का अर्थ लिखते हैं यहाँ पर भगवान भाष्यकार कि शब्दादिनाम अदनात् अदिति, ये शब्द है, रूप है, रस है, इसको भक्षण करता है, भक्षण करता है, भक्षण करता मतलब जानता है ये रूप है, बढ़िया बढ़िया रस है, खाते हैं पीते हो, तो जानने वाला ये बुद्धि थोड़ी है, जानने वाले बुद्धि में एक चेतन है परमात्मा, इसलिए बुद्धि जाने, चिदाभास बोलते हैं पंचदशी पढ़ रहे, चिदाभास तब जानेगा बुद्धि में जब परमात्मा जो है चेतन के रूप से हो, नहीं कैसे जानेंगे, इसलिए अदिति बोल दिया। और वही है सबकी माँ है, जितने भी देव देवता है ना, तो इसलिए देवतामयी देवतामयी बोल दिया। और वो बुद्धि रूपी शरीर में वो बैठा है, बैठा है, बैठ कर सब देख रहा है, कितना पुण्य कर्म हो रहा है, कितना पाप कर्म हो रहा है, सब वो साक्षी रूप से बैठ कर को देखता रहता है, देखता रहता है। और जो बना लिया संबंध शरीर में, वो हो गया जीव, वो हो गया जीव, संबंध बनाने वाला हो गया जीव, और संबंध न बनावे तो साक्षी हो गया, इसलिए दो स्वरूप हो गया। तो या भूते भीर विजायत, ये जो कार्यकारण संघात है वो इसके साथ तादात्म्य करके जीव रहता है, अतादात्म न करे तो साक्षी हो गया, हो गया ना, ऐसे ही दो, तो ऐसा है। इसलिए मूल को छोड़ दिया तो जीव हो गया, जैसे आप विचार करो भाई, जिसमें आप शांत होकर के बैठे हैं, कोई संकल्प नहीं है, तो आप सुखी है कि दुखी है, तो सुखी है कि नहीं, आप वहां पर शांत ही है, और किसी निमित्त से शांत नहीं है, वहां पर बिना निमित्त से शांत है, कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प कुछ नहीं, और खाते पीते समय करते तो निमित्त भले ही हो यहां पर, जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है तो उस समय तो आप शांत ही है। इसलिए शांति जो आत्मा की होती है ना, वो बिना निमित्त से होती है ना, और दुख जो होता है ये निमित्त से होता है, चंदन में दुर्गंधि निमित्त से, कीचड़ से होती है, लेकिन चंदन में सुगंधि किसी निमित्त से नहीं, ऐसा समझ कर रखो, क्योंकि पहुंचना ना यहीं तक ना, कि बिना निमित्त से जो सुख होता है वहां तक पहुंचना है। इसलिए आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वो बिना निमित्त से, इसलिए आपको दृष्टांत बता दिया कि जिस समय कोई संकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, तो वहां पर आप पुरुष है कि स्त्री है, कुछ भी नहीं, वहां पर जहां पर कुछ बनेंगे ना तो वहां पर दुख हो जाता है। इसलिए जहां पर कुछ बन कर रहेंगे ना, वहां पर तो जरूर दुख होगा, कुछ बन करके रहेंगे, बन कर विशिष्ट बन करके, जहां पर विशिष्ट बन जाएंगे ना तो वहां पर दुख हो जाएगा, इसलिए विशिष्ट में दुखी है, हो गया ना, इसलिए सामान्य में तो सुखी है और बिना निमित्त के सुखी है ना, इसलिए हम संसार में कैसा बनकर रहना चाहते हैं, सामान्य बनकर रहना चाहते हैं कि विशेष बनकर के, कहां सामान्य बनकर रहना चाहते हैं, कहां चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। चाहते हैं तो तब तक ठीक है कि नहीं, तो हर कोई झाड़ू लगाने वाला ही बोलते हैं भी, हम भी कम नहीं है, हम भी बहुत पुराने, बहुत दिन से हम झाड़ू लगा रहे हैं यहां पर, है ना, तो नए वाले से बोलेगा हम इतने दिन से यहां पर, और सावधान न हो, ना हो ना, ये तो ये वेदांत सुन करके भी आपको ये हो जाएगा अभिमान, ध्यान में रखो, सावधान यदि न हो ना, परमात्मा को यदि भूल जाएंगे ना, परमात्मा की कृपा को, संत की कृपा को, ये सुनते समय भी आपको अभिमान हो जाएगा, ध्यान में रखो, ये सच को ना, ये सच्चाई को, सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, लेकिन स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, स्वीकार करेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, हम अज्ञानी है, स्वीकार करेंगे तब ज्ञानी होंगे। पहले स्वीकार तो करो, है कि नहीं, जो अपने आप को कमजोर समझता है ना, वही बलवान बनता है परमात्मा की कृपा से, और परमात्मा की कृपा उसी को होती है, परमात्मा का बल उसी को होता है जो अपने आप को निर्बल समझे, सही बात है कि नहीं? इसीलिए हम जब तक विशेष बनकर रहना चाहते हैं ना, समझ लो कि हम अधिकारी नहीं है। भले ही व्यवहार करना है, व्यवहार करना ये नहीं है, लेकिन अंदर किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए, ये हमारा है। इसलिए दृष्टांत आप लोगों को बता रहा था, जिस समय कोई संकल्प विकल्प नहीं है तो आप वहां पर शांत ही है, कोई विशेष नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि मन थोड़ा बाहर चला गया, मनोराज्य हो गया, बैठे बैठे ना भगवान के भजन में है तो शांत ही है, लेकिन मन में थोड़ा संकल्प हो गया। संकल्प ये हो गया कि मनोराज्य करे, सपना नहीं मनोराज्य, तो क्या हो गया कि आपका कोई मित्र जो है ना बढ़िया कार में बैठ कर जा रहा है, बढ़िया नई गाड़ी, मनोराज्य आप कर लिया। तो देखो फिर मन में संकल्प, हमको भी गाड़ी चाहिए, हमको भी गाड़ी चाहिए। हाँ, आप नीचे आ गए, देखो आप शांत थे है ना, आप अशांत हो गए, तो गाड़ी चाहिए तो क्या, कैसे गाड़ी आएगी, पैसा जुटाओ। और क्या, पैसा जुटा लो, पैसा जुटा लिया, किसी उपाय से गाड़ी भी आ गई, तो गाड़ी आ गई तो आप सुख सुखी हो गए। देखो जहां से थे ना वहीं आ गए, विचार करके देख लो, जहां से थे आप वहीं आ गए, पहले आप शांत थे ही है ना, अभी गाड़ी आने पर शांत हो। अंतर क्या हुआ, पहले शांति बिना गाड़ी से थी, अभी शांति कब आई, गाड़ी के कारण आई, लेकिन साथ में किसको लेकर आई शांति, एक गाड़ी को लेकर आई, अकेले शांति नहीं आई। देखो एक उपाधि जुड़ गई यहां पर, हो गया कि नहीं, उपाधि जुड़ गई। और क्या हो गया कि अचानक आपका मनोराज्य खत्म हो गया, आंख खुला देखा कि अपना मित्र तो पैदल जा रहा है, हो गया कि नहीं, ऐसा हो जाता है। इसलिए एक उपाधि जुड़ गए तो आप विशिष्ट बन गए, आप तो दुखी दुख होता है, दुखी दुख होता है, ऐसा हो जाता है। इसलिए विलक्षण है देखो, इसलिए परमात्मा एक था, जैसे आप ध्यान कर रहे हैं एकदम निर्विशेष अवस्था में है, आप तो एक ही है, एक ही है कि नहीं, जैसे सपनों में भाई है ना, सपनों में जाने से पहले आप एक ही है, और सपन में गए तो सारा संसार हो गया है, तो एक से अनेक हो जाते कि नहीं। इसमें परमात्मा एक है, लेकिन वो परमात्मा है क्या हो जाता है, अनेक हो जाता है, संकल्प को लेकर, संकल्प को लेकर। ये बड़ा विलक्षण सिद्धांत है वेदांत का। अच्छा, तो हम आगे हिरण्यगर्भ तक, तो हिरण्यगर्भ में जो है आत्मा वो तो परमात्मा ही है, मतलब परमात्मा ही हिरण्यगर्भ रूप से, और सभी शरीर में जो आत्मा है वो भी परमात्मा ही है, परमात्मा ही है। अब कहते हैं अग्नि की बात, तो वो परमात्मा ही अग्नि के रूप से है, अष्टम मंत्र में, अरण्य और नहीं तो जात वेदा गर्व इव सुभृत गर्भिणी भी दीवे दीवे इंडो जागृवत भेर अविस्मद वीर मनुष्य वीर अग्नि है एतद वैत। ये अग्नि अग्नि होती है, ये अग्नि शब्द जो है ना अपने भारतीय परंपरा में विलक्षण है, एक अग्नि शब्द है। काष्ठ में प्रकट हो गए तो उसका नाम हो गया भूताग्नि, भाई लकड़ी में पैदा हो गए ना उसको क्या बोलेंगे, भूताग्नि बोलेंगे। और पेट में जो अग्नि है वो क्या है, अत वैश्वान अग्नि, अहम वैश्वान भूत्व, है कि नहीं, वो वैश्वान अग्नि हो गई। और एक अग्नि है ज्ञान अग्नि, देखो लकड़ी के साथ संबंध हो गया तो भूताग्नि हो गई, ज्ञान के साथ संबंध हो गया तो ज्ञान अग्नि हो गई, है ना। देखो एक ही अग्नि शब्द आगे अग्नि, तो लकड़ी में जो अग्नि पैदा होती है ना जिसमें यज्ञ करते हो, उसमें दो अग्नि चाहिए कि नहीं, मंथन करते हो भाई, मंथन कर तो ध्यान में सुनना इसको, है ना। तो अरणि मंथन के लिए क्या चाहिए, दो लकड़ी चाहिए, एक नीचे एक लकड़ी होती है, एक ऊपर लकड़ी होती है, हाँ तो घर्षण करना पड़ता है ना, घर्षण करना पड़ता है, हाँ उसके लिए बहुत ताकत चाहिए, कमजोर आदमी घर्षण नहीं कर सकता है, प्रमाद करोगे तो वहां पर अग्नि प्रकट नहीं होगी, और अग्नि प्रकट हो गई तो उसमें अग्नय स्वाहा करते हो कि नहीं, इंद्राय स्वाहा, तब स्वाहा से अग्नि करते हो, और अग्नि में जो भी डालोगे, एक क्विंटल भी घी डालोगे सब अग्नि हो जाएगी, ये अग्नि का काम हो गया। और ज्ञान अग्नि में भी दो लकड़ी होती है, ध्यान में है ना, तो केवल वहां पर दो लकड़ी नहीं, यहां पर ज्ञान अग्नि में दो लकड़ी होती है, तब ज्ञान अग्नि भाई पैदा होगी, प्रकट हो जाएगी। और ये भी समझ लो दृष्टांत में, वहां पर जो मंथन करते हो ना वो अग्नि पहले से है नहीं, लेकिन उस अग्नि में हवन नहीं कर सकते, वो अग्नि जब अभिव्यक्त हो जाएगी तो अभिव्यक्त अग्नि में हवन होगा, तो सूक्ष्म अनिव्यक्त अग्नि में हवन नहीं होता है, ठीक। इसी प्रकार यहां पर समझना है तो ज्ञान अग्नि के लिए भी दो लकड़ी चाहिए, दो लकड़ी यहां पर कौन से दो लकड़ी है तो समझना है, एक गुरु है लकड़ी और दूसरी लकड़ी क्या है शिष्य, हो गया ना, दो लकड़ी होती है। तो यहां पर भी संघर्ष घर्षण करना पड़ता है, अरे भी यहां पर घर्षण क्या क्या लड़ाई होगी दोनों में, गुरु और चेले में, हाँ ये लड़ाई कुछ नहीं है, ये शब्दों का टकराव हो रहा है ना अभी प्रेमपुरी आश्रम में, अभी हो रहा है कि नहीं, ये अखंड चल रहा है, ये जो शब्द का टकराव है ना, शब्द का विचार, ये हो गया क्या है मंथन, घर्षण करना पड़ता है। तो एक लकड़ी ऊपर होती है, एक लकड़ी नीचे होती है भैया, हाँ तो कौन सी लकड़ी ऊपर होगी कौन सी लकड़ी नीचे होगी, हाँ गुरु रूपी लकड़ी ऊपर होगी और शिष्य रूपी लकड़ी जो है ना वो नीचे रहेगी, हो गया ना, नहीं तो दोष हो जाएगा ना, जैसे भी गलती कर दिया हनुमान जी ने, एक बार हनुमान जी ने गलती कर दिया ना श्रीमद भगवद गीता को सुन करके, भाई भगवान तो उपदेश कर रहे अर्जुन को भगवद गीता का, हो गया ना, तो अर्जुन तो ठीक है शिष्य बन गया है नीचे वो बैठा है, लेकिन वो हनुमान जी क्या कर रहे ऊपर बैठ करके सुन रहे हैं, ध्वजा में बैठ करके, हो गया ना, जब गीता पूरी हो गई तो प्रकट हो गए हनुमान जी, हनुमान जी ने कहा भगवान कि आपने तो भाई त्रेता में ऐसा उपदेश किया नहीं हमको, त्रेता युग में ऐसा उपदेश नहीं किया था, आप अर्जुन को सुना रहे हैं, तो भगवान की लीला है वो सब जानते थे, अरे भाई तुम कहां से आ गए, बोले मैं प्रभु ऊपर सुन रहा था बैठ करके, हाँ लेकिन शिष्य को तो नीचे होना पड़ता है, तुमने बड़ी गलती कर दिया, और भूत प्रेत जैसे अदृश्य होकर सुनते तुमने भी ऐसा सुना, इसलिए तुमको पिशाच बनना पड़ेगा, पिशाच बनना, फिर जो है माफी मांगा हनुमान जी ने, हाँ इसका प्रायश्चित कैसा होगा, लेकिन प्रायश्चित तो हो जाएगा, तुमने जो सुना है ना इसके ऊपर भाष्य लिख दो, भाष्य तो इसको कहते हैं पिशाच भाष्य, हनुमान जी ने भाष्य लिखा पिशाच भाष्य। देखो दो लकड़ी यहां पर भी हो गई, ये गुरु रूपी लकड़ी ऊपर और शिष्य रूपी लकड़ी नीचे, और संघर्ष करना पड़ता है, प्रमाद नहीं करेंगे, प्रमाद करोगे तो ज्ञान होने वाला नहीं, ज्ञानाग्नि प्रकट नहीं होगी, तो विचार करना पड़ता है, विचार जैसे मनन कहा ना भाई, मनन आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य फिर मनन, ये मनन तो हो ही रहा है आप लोग कर रहे हैं, हो गया ना, तो फिर ये संघर्षण क्या होगा, विचार मनन, तब ज्ञानाग्नि प्रकट हो जाएगी, और उस ज्ञानाग्नि जब प्रकट हो जाएगी तो सारा संसार उसमें भस्मीभूत हो जाएगा, सारा कर्म उसमें भस्म हो जाएगा, इसलिए ज्ञानाग्नि सर्वभूताणि भस्मसात कुरुते, गीता में सुनते ना जैसे जितने भी घी है सब अग्नि रूप हो गए, ठीक है, सारा संसार भी क्या हो जाएगा अग्नि रूप, ये सर्वम कलोइदम ब्रह्म, ये हो जाएगा। इसमें दृष्टांत आगे बताएंगे उस ज्ञानाग्नि को कैसे रक्षा की जानी चाहिए, धारण कैसे करेंगे हृदय में, ये बताएंगे आगे, इतने में रखते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।